उद्धव बाल केशव ठाकरे, इस नाम ने महाराष्ट्र की सियासत को 360 डिग्री घुमा दिया है। फोटोग्राफी का शौक रखने वाले इस शख्स ने जो तस्वीर महाराष्ट्र की सियासत की खींची है, उसे समझने के लिए उद्धव को करीब से जानना जरूरी है। और इसीलिए पॉडकास्ट की एक खास सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका नाम है पांडे जी पॉलिटिकल हैं। मेरा नाम है अभिनव भट्ट और मेरे साथ हैं सुमित पांडे, जिनके पास उद्धव से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, जिन्हें सुनकर आप समझ सकेंगे कि कैसे 20 साल बाद एक बार फिर ठाकरे राज का दौर शुरू हो रहा है। सुमित जी, स्वागत है आपका। 20 नवंबर यानी कल महाराष्ट्र की सियासत में नया इतिहास लिखा जाएगा। ये कहना गलत भी नहीं होगा कि मुंबई के शिवाजी पार्क में एक सपना भी पूरा होने वाला है।
देखिए, मुझे मैं नहीं कह सकता कि बाल ठाकरे, क्या इस बात पर उनकी कोई राय थी कि क्या ठाकरे परिवार, जो कि एक समय तक 2 से 3 दशक तक जिसका काफ़ी प्रभुत्व रहा मुंबई की राजनीति पे और महाराष्ट्र की राजनीति पे, क्या वो अपने परिवार के किसी आदमी को डायरेक्टली पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में या कि मुख्यमंत्री या मंत्री देखना चाहते थे या नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि अपने जीवन काल में उन्होंने ऐसा नहीं किया
जी।
वो महाराष्ट्र के बहुत महत्वपूर्ण नेता रहे, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा, लेकिन जब भी शिवसेना और बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला, उनके इमीडिएट फैमिली से कोई भी आदमी ना कि चुनाव लड़ा और ना ही कोई मंत्री बना या मुख्यमंत्री बना। 94 से लेकर 99 तक जब 5 साल की शिवसेना और बीजेपी की सरकार रही, 2 मुख्यमंत्री रहे, दोनों मुख्यमंत्री शिवसेना के रहे और दोनों मुख्यमंत्री ठाकरे परिवार से नहीं रहे। पहले मनोहर जोशी रहे, उसके बाद नारायण राणे रहे। तो शिवसेना की जो राजनीति है उसमें एक बाल ठाकरे का कद ऐसा था कि उनको बाकियों से बहुत आगे और अलग देखा गया और उनको प्रोजेक्ट भी और सामान्य नेताओं से, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से बहुत अलग दिखाया गया। एक मेंटोर टाइप की उनकी एक इमेज बनाई गई, इसलिए शायद बाल ठाकरे ने उस किरदार को बहुत बखूबी निभाया। बाल ठाकरे के बाद जो आज की तात्कालिक राजनीति है, मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे ने उसकी ज़रूरतों को समझा है और उसी की वजह से पहली बार उनके बेटे ने इस बार चुनाव लड़ा और वो भी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।
मैं एक और चीज़ समझना चाह रहा था सुमित जी, कि उद्धव के लिए अब क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो सरकार चलाना कितना मुश्किल होने वाला है या आसान होगा?
देखिए, ये सरकार आसान नहीं होगी इस मायने में कि इस सरकार का गठन जिस तरह से हुआ है,
बिल्कुल तीन पार्टियां हैं,
लेकिन उससे ज़्यादा, तीन पार्टियां होने से ज़्यादा कि जिस तरह की घटनाक्रम पिछले 1-1.5 महीने में चला है, उसमें एक चीज़ तो स्पष्ट है कि इस सरकार की धुरी मुझे लगता है शरद पवार बन के उभरे हैं। वो चाहे सरकार में हों या ना हो, या एनसीपी दूसरा बड़ा दल हो, या उनका मुख्यमंत्री एनसीपी से हो या ना हो, लेकिन इस सरकार की पूरी धुरी, पूरा का पूरा जो पावर सेंटर है, वो शरद पवार होने की पूरी सामने संभावना दिख रही है। ऐसी स्थिति में जब उद्धव ठाकरे एक आइडियोलॉजिकली विपरीत पार्टी से, विचारधारा से अलग पार्टी से, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी में कोई दिक्कत नहीं है, एक मिरर इमेजेज हैं एक दूसरे की, एनसीपी कांग्रेस से टूट के आई, उनकी विचारधारा, उनका कल्चर, उनका रहन सहन, खाना पीना सब एक जैसा है। हाँ, शिवसेना अलग है,
शिवसेना पूरी तरह से अलग,
बिल्कुल अलग है। तो उस पूरे घटनाक्रम में के बाद शिवसेना को अपनी आइडेंटिटी बचाने रहना, सरकार में भी रहना, सरकार को लीड भी करना, ये बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि कई मुद्दे आएंगे। मान लीजिए कल की तारीख में आप मानिए कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था कि वीर सावरकर को वो भारत रत्न देंगे, शिवसेना इसका विरोध नहीं करती है, कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? एनसीपी का अपना स्टैंड है, उसका विरोध नहीं है। या कई ऐसे लोकल मुद्दे हैं महाराष्ट्र में जिसको कि कम्युनल या जिसकी कि ऐसी फॉल्ट लाइन है जिस पर कि शिवसेना और बीजेपी एक तरफ रहे और एनसीपी कांग्रेस ऐसे रहे दूसरी तरफ रहे, उन मुद्दों पर जब बीजेपी अपनी धार बढ़ाएगी तो शिवसेना के लिए एक स्टैंड लेना बड़ा मुश्किल होगा। वो कहाँ खड़ी हुई है? अगर वो अपना स्टैंड चेंज करती है तो अपनी पॉलिटिकल कैपिटल या अपनी पॉलिटिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो बीजेपी को लूज करेगी। तो गवर्नेंस में रहना, सरकार चलाना और साथ ही साथ उस पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को मेंटेन करके रखना, ये मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज उद्धव ठाकरे के सामने आने वाले दिनों में होने वाला।
सुमित जी, मैं थोड़ा सा पीछे 1999 की बात करना चाहता हूं, जब कहा जाने लगा कि शिवसेना के हाथ से सत्ता पूरी तरह से फिसल चुकी है और उनका वापसी कर पाना काफी मुश्किल है। कुछ सालों बाद बाला साहब ठाकरे की मौत हो जाती है, तो ऐसे में उद्धव के लिए पार्टी को खड़ा कर पाना कितना मुश्किल था?
देखिए, बहुत कठिन काम रहा है मेरे व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि हर एक आदमी को होता है क्या है कि कंपेयर किया जाता है कि आपसे पहले नेता कैसे थे, किसकी लेगेसी आपने ली, क्योंकि हर एक आदमी का अपना एक पॉलिटिकल स्वभाव होता है, वो कैसे चीज़ों को हैंडल करता है। तो हमेशा क्या होता है कि उद्धव ठाकरे की कंपैरिजन आप बाल ठाकरे से करेंगे, शिवसेना उस टाइम ऐसी थी या बाल ठाकरे ऐसे चलाते। सबसे पहले जानना है, समझना ज़रूरी है कि शिवसेना का उदय कैसे हुआ। अगर हम ये समझेंगे तो मुझे लगता है बाकी चीज़ें आसान हो जाती हैं। था क्या कि 60s में एक मूवमेंट वहाँ पर मुंबई में चला, और एक बड़ी वजह ये भी थी कि जो लोकल आदमी थे, लोकल लोग थे, उनके अंदर एक रिजेंटमेंट की भावना थी कि बाहर के लोग आके उनको तरजीह मिल रही है, नौकरियाँ मिल रही हैं, जॉब्स मिल रहे हैं नॉन मराठी, तो वो एक सेंटिमेंट था, वो धीरे धीरे डेवलप हुआ। अच्छा, उस समय कांग्रेस का महाराष्ट्र पे प्रभुत्व था, बड़े बड़े नेता थे, और कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती आती थी वो तो या तो समाजवादियों से आती थी या ट्रेड यूनियनिस्ट से आती थी, खासकर मुंबई में जी। तो कहा यह जाता है कि बहुत समय तक एक तरह से ट्रेड यूनियन मूवमेंट मुंबई में जो कम्युनिस्टों का और सोशलिस्टों का था, उसको चैलेंज करने के लिए कांग्रेस ने ही शिवसेना को शह दे के बढ़ाया, और धीरे धीरे वो बढ़ाते गए, और धीरे धीरे आपने देखा कि मुंबई में ट्रेड यूनियंस का जो वर्चस्व था वो धीरे धीरे कम होने लगा। यहां तक कि कहा जाता है कि अर्ली 80s में जब AR अंतुले, अब्दुल रहमान अंतुले मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के महाराष्ट्र में, तो उस समय में कुछ मुद्दों पर कांग्रेस को शिवसेना ने समर्थन दिया था, मदद की थी, और 2-3 विधान परिषद मेंबर्स चुनने में कांग्रेस ने शिवसेना की मदद की, जिसमें कि शायद पहली बार मनोहर जोशी, जो कि बाद में मुख्यमंत्री बने, वो विधान परिषद में महाराष्ट्र में पहुंचे। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे, क्योंकि अब पार्टी का एक बेस तो बन ही गया था, बीजेपी की भी ग्रोथ थी वहां पर, तो शिवसेना एक तरह से अपने आप में एक पार्टी बन के या एक उसकी स्ट्रेंथ डेवलप की, और उसने कांग्रेस को ही चैलेंज किया और बीजेपी के साथ मिलकर, लेकिन शिवसेना एक बड़ा पार्टनर था। दूसरा इंटरेस्टिंग उसका एस्पेक्ट यह है कि बाल ठाकरे भी बहुत पॉपुलर कार्टूनिस्ट थे, और कई बार उन्होंने अपने पॉलिटिकल मैसेजेस जो हैं, एक मीमांसा करके मैगजीन आती थी, उसमें उन्होंने उसके रूप में जाहिर किए थे। और अगर मैं, मुझे सही याद पड़ रहा है, तो जब उनकी पहली रैली भी मुंबई में हुई थी, तो एक उन्होंने शायद छोटा सा इश्तेहार दिया था कि इस मुद्दे पर आज मुंबई में इस ग्राउंड पे आपको लोगों को मैं निमंत्रित करता हूँ, आ रहिए। और जब लोग वहाँ पहुँचे तो देखा कि इतना ज़्यादा शायद सेंटिमेंट था कि अपेक्षा के मुताबिक भी उतना उनको उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ आ पाएगी। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन शिवसेना पहली बार सरकार में आई 94 से 99 तक, जब बीजेपी के साथ वो पहली बार उनको पावर मिली। 99 के बाद जब नारायण राणे मुख्यमंत्री थे, सरकार वहां से चली गई, तो अगले 3-4 साल में शिवसेना के लिए सबसे दिक्कत का समय रहा, क्योंकि धीरे धीरे कांग्रेस ने लोगों को तोड़ना शुरू किया। यहां तक कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो उस समय थे, नारायण राणे जो पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी बाल ठाकरे पर पुत्र मोह होने का आरोप लगा के शिवसेना छोड़ी और वो कांग्रेस में जा बैठे। बाद में वो रेवेन्यू मिनिस्टर बने कांग्रेस में। उस टाइम में पहली बार उद्धव ठाकरे को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया। शिवसेना की जो जनरेशन दूसरा था आने वाला, उसमें दो प्रमुख चेहरे थे, राज ठाकरे जो बाल ठाकरे के भतीजे, जो कि माना जाता था कि काफ़ी एग्रेसिव उनकी पॉलिटिक्स थी, उनका मिजाज था, उनके भाषण थे, और दूसरी तरफ उनके बेटे उद्धव ठाकरे। और उद्धव ठाकरे खुद जो हैं वो JJ स्कूल ऑफ आर्ट से आते हैं, वहाँ के ग्रेजुएट हैं, और कार्टूनिस्ट हैं, फोटोग्राफर हैं, उनको उतना एग्रेसिव नहीं देखा गया था पार्टी में जिस तरह की राज ठाकरे को। तो माना यह जाता था कि हो सकता है राज ठाकरे आगे जाके शिवसेना की कमान संभाले, लेकिन 2003 में पहली बार उद्धव ठाकरे को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया बाला ठाकरे के होते हुए, और नारायण राणे ने आरोप लगाया कि पुत्रमोह है, और इसका प्रस्ताव भी राज ठाकरे ने किया शिवसेना की बैठक में। उसके बाद धीरे धीरे बाल ठाकरे का वहां से एग्जिट होती रही, लेकिन एक चीज़ और पैरेलल हुई, बीजेपी की ग्रोथ 2004 के बाद 2009 तक तो बीजेपी नीचे आई, फिर धीरे धीरे नरेंद्र मोदी का उदय और बीजेपी की ग्रोथ। तो शिवसेना जो कि रीजनल नेशनलिज्म और हिंदुत्ववादी पार्टी थी, उसके सामने एक राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पार्टी का उदय हुआ जो कि उसका अलायंस पार्टनर था। तो स्वाभाविक तौर पर दोनों की कॉन्स्टिट्यूएंसी एक ही थी, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी होने का फायदा बीजेपी को मिला और धीरे धीरे वो शिवसेना पर ही हावी होती गई, जिसका कि प्रभाव आप 2014 के चुनाव में और इस बार फिर देखते हैं।
आपने सही कहा कि उद्धव को उतना एग्रेसिव नहीं कहा जाता है बाला साहब ठाकरे की कंपैरिजन में, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ वो पहला भाषण जो उद्धव ठाकरे ने दिया था वो कैसा था।
देखिए, कहते ये हैं कि हमारे एक कॉलमिस्ट हैं धवल कुलकर्णी, उन्होंने ठाकरे साहब पे किताब भी लिखी हुई है, तो काफ़ी डिटेल में उन्होंने हमारे लिए बीच में एक आर्टिकल लिखा था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि पहली बार शायद 1992 या 93 में जो शिवसेना का जो विद्यार्थी यूनिट है उसकी कमान राज ठाकरे के पास थी और नागपुर में कोई सम्मेलन था और वहाँ पर रात को पहली बार बोला गया कि उद्धव ठाकरे वहाँ पर भाषण देंगे। और वो लिखते हैं कि शायद उद्धव राज ठाकरे के सपोर्टर्स को, समर्थकों को ये बात शायद उनको कुछ बुरा भी लगा कि सारी मेहनत वो कर रहे हैं या उनके नेता कर रहे हैं और उद्धव, तो वहाँ से पहली बार आपको दिखा। लेकिन उद्धव ठाकरे पार्टी के भीतर और पीछे से काम, जैसे कि मैंने कहा कि जे स्कूल ऑफ आर्ट से आते हैं, तो जब सामना लॉन्च हुआ तो उसके पीछे का जो पूरा काम था, कैसे पब्लिकेशन में जाना है, डिज़ाइन है, क्या है, उसके क्या तेवर होंगे, क्या होगा, उस पर उद्धव ठाकरे ने काफ़ी काम किया लोग कहते हैं उस समय पे। लेकिन हाँ, वो एक उनका स्टाइल उस तरह का एग्रेसिव स्टाइल नहीं था जिस तरह की बाल ठाकरे का था। और शायद यही वजह है, आपने देखा है पिछले 5 साल में जब भी बीजेपी के साथ लड़ाई हुई है, शिवसेना बीजेपी के साथ सरकार में रही है लेकिन एग्रेसिवली विरोध भी करती रही है, तो उद्धव ठाकरे ने अपनी इमेज को तो मेंटेन करके रखा है कि वो एक सॉफ्ट स्पोकन है, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। ये काम उन्होंने अपनी तरफ से संजय राउत पर छोड़ दिया है, जो कि पार्टी की उस छवि को बरकरार रखने में कामयाब रहे।